नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 27 दिसंबर 2019 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में यूनिवर्सिटी लेक्चरर को मृत्युदंड की। यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने निंदा की, सजा को न्याय का उपहास बताया। अफगानिस्तान में युद्ध समाप्ति के बाद ही खुलेगा समृद्धि का रास्ता, यूएन के विशेष प्रतिनिधि ने सभी से शांति के लिए आवाज उठाने की अपील की। सीरिया में लड़ाई तेज होने पर नए सिरे से विस्थापन, बच्चे भुगत रहे हैं हिंसा का खामियाजा। सुनिएगा एक खास बातचीत महिलाओं के लिए काम करने वाली यूएन संस्था की उप कार्यकारी निदेशक अनिता भाटिया से, और साथ ही जानिएगा कृषि के लिए जैव विविधता का महत्व। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। साथ ही एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस में आप हमारा न्यूज ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए यूएन न्यूज रीडर, जिसमें बाईं ओर भाषाओं की सूची में हिंदी भी नजर आएगी। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के मुल्तान शहर की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर जुनैद हफीज को ईश निंदा के आरोप में मौत की सजा सुनाए जाने की निंदा की है। उन्होंने इस सजा को न्याय का मखौल करार देते हुए आशंका जताई है कि मामले की सुनवाई कर रही न्यायिक टीम के सदस्यों में डर का माहौल है। 30 वर्षीय जुनैद हफीज पाकिस्तान के मुल्तान शहर की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें 13 मार्च 2013 को गिरफ्तार किया गया था और उन पर कथित रूप से छात्रों को पढ़ाने के दौरान और फेसबुक अकाउंट पर ईश निंदा के आरोप लगे थे। पिछले साल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला आसिया बीबी को ईश निंदा के एक मामले में बरी कर दिया था, जबकि निचली अदालतों ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक आसिया बीबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालतों के लिए एक मिसाल कायम होनी चाहिए थी कि ईश निंदा के हर उस मामले को खारिज कर दिया जाएगा जो पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ। ऐसे में जुनैद हफीज को दोषी करार दिया जाना न्याय का उपहास है। विशेषज्ञों ने आग्रह किया कि जल्द से जल्द जुनैद हफीज की अपील को सुना जाए, मौत की सजा के फैसले को पलटा जाए और उन्हें बरी किया जाए। यूएन विशेषज्ञों का कहना है कि जुनैद हफीज पर जो मृत्युदंड थोपा गया है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है और इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस सजा पर अमल होना मनमाने ढंग से किसी को मारने जैसा होगा। जुनैद हफीज को वर्ष 2014 में मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने के बाद से एकांतवास में रखा गया है, जिससे उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने बताया कि इस मामले में मुल्तान की अदालत में लंबा मुकदमा चला, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे पाया। इसके अलावा अदालत में कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए गए जिनकी स्वतंत्र रूप से फॉरेंसिक समीक्षा नहीं हुई, जबकि उन पर जाली होने के आरोप लगे थे। जुनैद हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में हत्या भी कर दी गई थी और हत्यारों को सजा नहीं दी गई। यूएन विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायिक टीम के सदस्यों में डर का माहौल है। यह इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि लंबे मुकदमे की कार्रवाई के दौरान कम से कम 7 न्यायाधीशों का ट्रांसफर किया गया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख तादामीची यामामोतो ने कहा है कि देश में युद्ध समाप्ति के बाद ही स्थानीय लोगों के समृद्ध भविष्य की कल्पना की जा सकती है। अफगानिस्तान में हिंसक संघर्ष लंबे समय से जारी है और पिछले एक दशक में ही 1 लाख से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। इस साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव भी हुए, लेकिन घपले के आरोपों के बीच नतीजे आने में लंबा समय लग रहा है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी कम अंतर से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख तादामीची यामामोतो ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव का चाहे जो भी नतीजा हो, नए प्रशासन के लिए शांति सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की उस अपील को दोहराया जिसमें सभी से शांति के लिए आवाज उठाने और सभी पक्षकारों से युद्ध समाप्ति के लिए खड़े और ठोस कदम उठाने की बात कही गई है। मिशन प्रमुख यामामोतो ने अफगानिस्तान में टिकाऊ शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वार्ता के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि अफगान नागरिकों के नेतृत्व में होने वाली शांति प्रक्रिया का वो अहम हिस्सा हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध की समाप्ति के बाद ही अफगानिस्तान में समृद्ध भविष्य के लिए वास्तविक उम्मीद बन पाएगी। यूएन मिशन प्रमुख ने दुख जाहिर किया कि अफगानिस्तान में जारी लड़ाई का खामियाजा यहां की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यूएन मिशन के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हिंसक संघर्ष में 1,00,000 से ज्यादा आम लोग हताहत हुए हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में सैन्य कार्रवाई तेज होने के बाद उपजे हालात पर चिंता जताई है और लड़ाई तत्काल रोके जाने की अपील की है। हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग नए सिरे से विस्थापित हुए हैं और राहत शिविरों में भीड़ ज्यादा होने और तापमान गिरने से चुनौतियां बढ़ गई हैं। पूरी जानकारी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक ने एक बयान जारी करके कहा कि सैन्य कार्रवाई के स्तर और इलाकों को खाली करने के रास्तों से होकर जाते आम नागरिकों पर हमले होने की खबरों से यूएन प्रमुख चिंतित हैं। महासचिव ने सभी पक्षों से आम लोगों की रक्षा करने और आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखने के दायित्व का निर्वहन करने की अपील की। सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ने से अब तक अनेक लोगों के हताहत होने की रिपोर्टें मिली हैं और 80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इनमें से 30,000 लोगों को पिछले एक हफ्ते में ही विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक मानवीय सहायता स्थायी, निर्बाध और सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के रास्ते की गारंटी दी जानी चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र और साझेदार संगठन देश के उत्तरी हिस्से में जरूरी सेवाएं जारी रख सकें। यूएन प्रमुख ने दोहराया कि सीरिया में हिंसक संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। वर्षों से जारी समस्या का एकमात्र समाधान संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जारी राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 के तहत अपनाया जाएगा। ये प्रस्ताव 2015 में पारित किया गया था और इसमें युद्ध विराम व राजनीतिक निपटारे की पुकार लगाई गई है। उधर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने सीरिया में बच्चों की व्यथा कथा को बयान करते हुए मंगलवार को कहा कि वर्ष 2019 के पहले 9 महीनों में 500 से ज्यादा बच्चे हताहत हुए थे। दिसंबर में हताहत होने वाले बच्चों की संख्या 65 आंकी गई है। हिंसा और विस्थापन में तेजी एक ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र में तापमान गिर रहा है और ठंडे मौसम में बारिश के कारण हजारों परिवारों को उत्तरी हिस्से की ओर पलायन करना पड़ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भारतीय मूल की अनीता भाटिया को इस साल मई महीने में सहायक महासचिव नियुक्त किया था। अनीता भाटिया को विश्व भर में लैंगिक समानता, लड़कियों और महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करने वाली यूएन संस्था यूएन विमेन की उप कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पद उन्होंने इस वर्ष अगस्त में संभाला और तभी से उन्होंने अनेक देशों का दौरा करके महिलाओं की भलाई के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा लिया है। सुनिए महबूब खान के साथ उनकी ये खास बातचीत।
अनीता भाटिया, बहुत शुक्रिया यूएन न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। आपको यूएन वुमेन ज्वाइन किए हुए करीब 4 महीने हो गए हैं
जी,
तो शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है।
मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी वेरिड है। काम के बारे में ये बोल सकती हूँ कि काफ़ी देश में गई हूँ, काफ़ी देखा है मैंने, काफ़ी लोगों से मिला है, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला है और एक ही चीज़ मैंने सुनी है कि जो आजकल लड़कियों और औरत की सिचुएशन है बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। बहुत ही चीज़ें आजकल काम नहीं कर रही हैं लड़कियों और औरतों के लिए।
आपने जिक्र किया कि कई देशों का दौरा करने का मौका मिला है आपको पिछले 4 महीनों के दौरान, तो किस किस देश में जाना हुआ है और कोई खास कुछ स्टोरीज बताएं कि क्या क्या इश्यूज आपके सामने आए।
बहुत बहुत देश में गई हूँ मैं। गई जॉर्डन, पेरिस, इजिप्ट गई, आइसलैंड गई, फिनलैंड, सोच रही हूँ और कहाँ गई हूँ, हाँ थाईलैंड गई थी। काफ़ी देशों में काम था। दो तरह के काम हैं। एक तो काम है हमारे डोनर से मिलना, जो हमारा काम फंड करते हैं उनसे मिलना, उनसे एक्सप्लेन करना हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरे देशों में हमारे बहुत प्रोग्राम्स हैं, तो ये मैं गई देखने के लिए हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा है। हम लोग इतना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, सरकारों के साथ, लोगों के साथ, लेकिन आम عورت اور عام لڑکی کے لیے ان کی زندگی میں یہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے کام سے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, بہت قانون ہے جو عورتیں اور لڑکیوں کے اگینسٹ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, ایسے قانون نہیں ہونے چاہیے. تو ہمارا کام ہے سرکاروں سے بات کرنا اور ان سے کہنا, ان سے ایکسپلین کرنا کہ ایسے قانون بدلنے چاہیے.
آپ نے ذکر کیا جارڈن کا, جیسے کہ کس طرح کے بہت سارے ایسے قانون ہیں جو ڈسکریمنیٹری ہیں اگینسٹ وومن, تو کیسے قانون ہے اور وہ آپ کیسے اس کو بدلوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا سرکار آپ کی بات سنتی ہے؟
سرکار بات سنتی ہے لیکن کافی کام لگتا ہے ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیوں یہ قانون بدلنا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ایک دیش میں گئی, وہاں پر ایک قانون ہے جہاں اگر ایک عورت کو اپنے پتی سے کچھ, اس سوچ لیجئے کہ اس کے پتی اس کو مار رہے ہیں, یہ عورت چاہتی ہے کہ میں دوسری جگہ جاؤں جہاں میں رہ سکتی ہوں آرام سے. وہ جاتی ہے پولیس کے پاس. پولیس کہتے ہیں دیکھیے آپ تین چیز کر سکتے ہیں, یا تو اپنے پتا کے پاس جا سکتے ہیں, یا تو اپنے پتی کے پاس واپس جا سکتے ہیں, یا تو آپ کو پروٹیکشن کے لیے جیل میں جانا پڑتا ہے. یہ ہے قانون. آپ مجھے بتائیے یہ کیسا قانون ہے جس میں عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو جیل بھیجنا پڑتا ہے. تو ایسے قانون ہم بدلنا چاہتے ہیں.
ساؤتھ ایشین جو کنٹریز ہیں, اسپیشلی بھارت ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, سب میں آلموسٹ ایک جیسا ہی ماحول ہے. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہم بھارت کی ہی بات کریں تو کیا کیا خاص ایشوز ہیں اور وہ اور کیا کیا جا سکتا ہے وہاں؟
دیکھیے بھارت ایک بہت کانٹراڈکٹری جگہ ہے. ہمارا دیش ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت لیڈرشپ میں عورتیں آتی ہیں. دیکھیے ہماری پرائم منسٹر ایک عورت تھی, اور ہمارے کتنے منسٹرز عورت ہیں, ہمارے کتنے بزنسز میں عورت لیڈرز ہیں, کتنے بینکس میں عورت لیڈر ہیں. لیکن آرڈنری عام عورت کے لیے زندگی اچھی نہیں ہے, یہ میں کہہ سکتی ہوں. کیونکہ کیا ہوتا ہے, انڈیا میں جینڈر بیسڈ وائلنس تو بہت ہی ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں جنرلی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ایکسیس ٹو ایجوکیشن آج کل امپروو ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی گلوبل اسٹینڈرڈ سے بہت لو ہے. میرے لیے جب میں سوچتی ہوں کیا ہے سچویشن لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ان انڈیا, ایک تو چیز ہے پڑھنا, ایجوکیشن, لیکن دوسرا یہ فریڈم فرام وائلنس ہونا چاہیے, اور ابھی تک یہ ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے.
یہ تھی یو این ویمن کی اپ کاریکاری نردیشک انیتا بھاٹیا. ہمارا بھوجن اور کرشی پرنالی آس پاس موجود پودوں, پشوؤں اور سوکشم جیووں پر نربھر ہے. جیو وویدھتا ہر استر پر کسانوں, پشو پالکوں اور مچھواروں کی بھوجن اتپادن کی کشمتا بڑھاتی ہے. اس سے پراکرتک آپدا کے جھٹکوں اور تناووں کے پرتی سہنشیلتا تو بڑھتی ہی ہے, ساتھ ہی اتپادن پرنالیوں کو سبھی چنوتیوں سے نپٹنے میں مدد بھی ملتی ہے. اس لیے ٹکاؤ ڈھنگ سے کرشی اتپادن بڑھانے کے پریاسوں میں جیو وویدھتا کو ایک مہتوپورن ذریعہ مانا جا سکتا ہے, جو ٹکاؤ وکاس کے ایجنڈا کو پورا کرنے کے پریاسوں کے لیے بھی اہم ہے. حال ہی میں یو این کے کھادیہ ایوم کرشی سنگٹھن نے بھارت کی راجدھانی دلی میں کرشی جیو وویدھتا پر ایک ورکشاپ آیوجت کی. کرشی میں جیو وویدھتا کے مہتو کے بارے میں وستار سے جانکاری کے لیے ہماری سہیوگی انشو شرما نے کھادیہ ایوم کرشی سنگٹھن کے بھارت کاریالے میں راشٹریہ سلاہکار شالینی بھوٹانی سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ جیو وویدھتا کے کیا معنی ہیں.
ایگرو بایو ڈائیورسٹی یعنی جیو وویدھتا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اس کا ارتھ یہ ہے کہ یدی آپ کھیتوں میں دیکھیں, اپنے کھان پان میں دیکھیں, چاہے آپ قسمیں دیکھیں کہ الگ الگ طرح کی قسمیں ہیں, جیسے کہ پنجاب میں نیلی راوی واٹر بفلو ہے اور کیرلا میں ویچور کاؤ ہے, تو اس طرح کی جو وویدھتا ستھانی استر پر ہمارے دیش میں بھارت میں ہے پراکرتک روپ سے, اور کیونکہ پارمپرک گیان اور جو ہمارے کسان بھائی بہن ہیں ان کے پریاس سے جو سلیکشنز ہوئے ہیں اور لوکل ورائٹیز اڈیپٹ ہوتے ہیں, تو اس سے یہ وویدھتا بڑھتی ہے. تو तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से प्राकृतिक रूप में विविधता है,
इसके आयाम क्या हैं? अगर हम भारत को लें या दक्षिण एशिया को लें तो किस तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है?
हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें तो भारत में वो माना जाता है कि वो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उसमें जो जैव संसाधन है उसमें विविधता पहले से ही रही है और ये एक सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है, जिसमें जिस तरह से उड़ीसा राज्य में जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे इट्स कंसिडर्ड अ सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर राइस, तो आज भी वहाँ पे पारंपरिक किस्में जो किसान खुद जिन्होंने उसे डेवलप किया है और अडेप्ट किया है, कई तरह की किस्में हैं जहाँ से बाकी जो विश्व भर में जहाँ से यहाँ से गई हैं ये ऐसे जो किस्में हैं मछली में, गाय भैंस में, और जो पदार्थ हम जैव संसाधन इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए या दवा के लिए उन सब में इतनी विविधता है। और अब देखिए हर एक प्रांत में उसकी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के हिसाब से वहाँ पे हर तरह के प्राकृतिक रूप अलग अलग होते हैं। जैसे बासमती आपको साउथ इंडिया में नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल बासमती कहलाता है वो एक एग्रोइकोलॉजिकल जोन है हिमालयाज में, जो जिसे ऑथेंटिक बासमती कहा जाता है। तो हर एक स्थान की जो वायु जल परिस्थिति है उसके हिसाब में जो पनपता है और जो पारंपरिक ज्ञान से वहाँ पे उपजा है वही इस तरह से एग्रो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग भी बहुत होती है कि बाहर के देशों से लोग यहाँ से एक सैंपल ले जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील देश अपने लाइफ स्टॉक को और समृद्ध बनाने के लिए, लाइफ स्टॉक सेक्टर को समृद्ध बनाने के लिए यहाँ से ओंगोले कैटल ब्रीड जो है उसका एक सैंपल जेनेटिक मटीरियल लेके गए हैं ताकि वो उसे क्रॉस ब्रीड करके और अपने कैटल वैराइटीज़ को और शक्तिशाली बना सकें या उसमें उससे और उपज ले सकें या प्रोडक्शन ले सकें मिल्क और मीट के लिए।
तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी को जलवायु परिवर्तन या मानव के क्रियाकलापों की वजह से किसी प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है?
बहुत ज़्यादा, जहाँ तापमान बढ़ता है या फिर तापमान कम होता है या जहाँ पे तूफान आंधी आती हैं तो उसका असर तो सीधा सीधा पड़ता ही है। और उससे मानव को जो जैव संसाधन को मिलने में जो दिक्कतें आती हैं, लॉस ऑफ सीड्स और लॉस ऑफ ब्रीड्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या जेनेटिक इरोजन जिसे कहा जाता है कि कई किस्में लुप्त हो जाती हैं क्योंकि अब उनकी प्राकृतिक घर जो है वो उजड़ जाता है एक तरह से। जलवायु परिवर्तन की वजह से तो चुनौतियां हैं ही, पर जैव विविधता एक तरह से एक इंश्योरेंस भी है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इस जैव विविधता को सुरक्षित रखना, उसको बचा के रखना अपने ही खान पान के लिए ही एक इंश्योरेंस है, एक तरह से बीमा है। वी हैव अ मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। अगर आपके पास एक बीज है जो किसी तूफान या किसी वर्षा के से लुप्त हो गया है या खराब हो गया है, आपके पास दो तीन और किस्में हैं जो इस परिवर्तन को सह सकती हैं, उनमें ऐसी क्षमता है या शक्ति है कि वो फ्लड वाटर्स में भी या ड्राउट रेजिस्टेंट हैं तो अंडर सबमर्जेंस भी फिर भी वो दे विल बेयर फ्रूट एंड यू विल बी एबल टू गेट योर फूड ग्रेन्स। इट्स अ टू वे रिलेशनशिप कि क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है पर क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए और उससे डील करने के लिए एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक तरह से इंश्योरेंस।
FAO कार्यालय में राष्ट्रीय सलाहकार शालिनी भुटानी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए, नमस्कार।